हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से आए हुए एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो जिन्होंने स्टेज और टीवी में भी काम किया, पेशेवराना तौर पर बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता हैं मगर शायरी उनका अपना इश्क है। जनाब रफत सिद्दीकी साहब, हम अपने स्टूडियो में आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और एक रवायती से सवाल से मैं अपनी बातचीत का आगाज करूँगा कि ये शायरी का शौक कैसे शुरू हुआ।
अलवी साहब, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ मधु किया। दरअसल मेरे वालिद साहब का ताल्लुक सेवहारा ज़िला बिजनौर से रहा है और डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी जो गालिब पे अथॉरिटी समझे जाते थे वो उनके कज़िन होते थे। तो घर में एक अदबी माहौल था और जब मैंने होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द अदबी रसाइल और दीवान और शेर व शायरी की किताबें यही देखने को मिली, तो ये सौदा जो है वो लहू में शामिल।
तो ये इर्द गिर्द का माहौल जो आपको इस तरफ खींचता था उसी की कशिश आपको शायर बना गई। मगर पहले ये बताइए कि मैं आपकी किताब देख रहा था, उसमें आपने कुछ अपने बारे में जो लिखा है वो सफर आपका आपको स्टेज की दुनिया पे भी ले गया और टीवी ड्रामों तक भी ले गया, ये क्या मामला था?
बस हिजरत के बाद जब लाहौर में हम आए तो जॉब की तलाश में थे, तो जितना अरसा वो तलाश जारी थी तो हमने कहा कुछ अपनी तबाह आजमाई की जाए, जो टैलेंट था। तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर और टीवी में कुछ अपनी तबाह आजमाई की और उसके बाद हमारे करम फरमा को हमारी ये आवारा गर्दी पसंद नहीं आई तो उन्होंने हमें यूनाइटेड बैंक में भर्ती करवा दिया।
तो ये टीवी और स्टेज का दौर किस सन की बात है?
ये है 1968 की बात है।
जब लाहौर टेलीविजन का नया
नया शुरू हुआ था,
पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ था। इसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गए और शायद ट्रेनिंग के शोबे से आप वाबस्ता रहे और अभी भी हैं शायद।
जी, वहाँ पर फिर वो जब UBL में हमें जॉब मिला तो ब्रांचेस की ट्रेनिंग और इन सब के बाद जो हमारा असाइनमेंट था वो ट्रेनिंग के शोबे में रहा और उसके बाद जब UBL से हम रिटायर हुए तो हबीब बैंक ज्यूरिख में आ गए और उसके बाद अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में, वहाँ भी यही सिलसिला जारी रहा।
शायरों के मुताबिक कहा जाता है कि शायरी ही उनका तारुफ होता है, आपका और तारुफ भी माशाल्लाह बहुत वसी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी एक किताब भी आपके साथ मौजूद है, अगर आप अपने कलाम में से हमारे सामईन की नज़र कुछ करें।
जी बिल्कुल, मैं एक पहले नात से शुरू करता हूँ।
जी अता कीजिए।
मुस्तफ़ा चश्म करम, चश्म करम, चश्म करम, हर तरफ रंजो अलम, चश्म करम, चश्म करम, हर तरफ आहो बुका, कत्ल रवा, जुल्म बपा, हर तरफ जोर व सितम, चश्म करम, चश्म करम। हाँ के पस्ती में गिरे बन के असीर दुनिया, हाँ भटकते हैं कदम, चश्म करम, चश्म करम। हाँ नहीं कोई भी औसाफ हमीदा हम में, हाँ गुनाहगार हैं हम, चश्म करम, चश्म करम। आखिरत भूल गए इशरत दुनिया के इवज, पासदारान हरम, चश्म करम, चश्म करम।
बहुत खूब।
और नफ्स अम्मारा ने क्या क्या न दिलो जहाँ के लिए, फिर तराशे हैं सनम, चश्म करम, चश्म करम। आ गया वक्त तो कांधों पे लिए बारे गुनाह, चल दिए सुए अदम, चश्म करम, चश्म करम। और दिल हुए सख्त तो कुछ और बढ़ी दुनिया में, ख्वाहिश जाहो हशम, चश्म करम, चश्म करम। और जब रहा कोई न चारा तो पुकारा आका, तुमको बादीदा एनम, चश्म करम, चश्म करम। और इज्जो गिरिया मेरी तहरीर में आए तो लिखूं, मालिक लोह कलम,
चश्मे करम, चश्मे करम। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि वक्त कम है इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने कुछ मुंतखब शुदा अशार या ऐसे कतार छोटे छोटे अगर हों वो भी हमारे सामईन से कुछ शेयर करें, ताकि हमारे सामईन जो पूरी किताब जिन तक नहीं पहुंच सकी वो कुछ मुंतखब चीजें सुन लें इसमें, इसके बजाय कि पूरी पूरी गजलें हों कुछ मुंतखब अगर अशार हों तो वो हमारे सामईन की नजर करें। आप
ये कराची के जब हालात बहुत खराब थे उस वक्त कहे दो तीन शेर में सुनाता हूँ। अब तो इस शहर में रहना भी गवारा नहीं है, ये अलग बात कि इस बात का यारा नहीं है। तो क्या अजब दौर है, हर शख्स से खौफ आता है, ऐसा लगता है कि अब कोई हमारा नहीं है। और खुश ना हो आज के नमरूद के कुदरत ने उन्हें ढील दे रखी है कुछ देर जो मारा नहीं है। और फिर नए अज़्म से उठा तो कयामत होगी, थक के जो बैठ गया है अभी हारा नहीं है। अच्छा, आजकल ये टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला है,
जी
लोग आपस में नहीं मिलते, तो उसी का कुछ अशार इस गज़ल में आप देखिए। कहने को तो कह देते हैं अच्छा शाम को मिलते हैं, लोग इस शहर के हंगामे में अब तो नाम को मिलते हैं। और एक देवी की संगत में हम घंटों बैठा करते थे, और अब ओट के अब ओट से दरवाजे की बस परनाम को मिलते हैं। लो फिर फोन की घंटी चीखी, कोई पुराना दर्द उठा, लो फिर इस गमखार से कहने अच्छा शाम को मिलते हैं। और दुनिया के इल्ज़ाम सजा लो रिफत अपने सीने पर, राहे इश्क के ये तमगे तो हर बदनाम को मिलते हैं।
बात हो। और रफ़त साहब ये भी फरमाइएगा कि आपने ये किताब मुरतब करने का कैसे ख्याल आया?
बस ये एक शौक था अपना, और साथ साथ जो गज़लें और नज़में होती रहीं वो हम उनको एक डायरी में लिख लिया करते थे, फिर सोचा कि चलें इसको छपवा के दोस्तों की खिदमत में पेश करते हैं।
तो किस सन में सामने आई आपकी ये किताब मजमूए कलाम?
ये 4 साल हो गए इसको।
और क्या नाम है इस किताब का?
इसका है जी एक दाग नेहा और।
एक दाग नेहा और।
जी जी लोगों को है खुर्शीद जहां ताप का धोखा, हर रोज दिखाता हूँ मैं एक दाग नेहा और।
दाग
ये गालिब के मशहूर शेर से मारूफ, इसको मैंने जी हल्की।
तो शायरी में आमतौर पे लोग एक ट्रेंड की बात करते हैं, या किसी से मुतासिर होने की बात करते हैं, किसी के उस्ताद होने की बात करते हैं, या किसी को से इंस्पायर होने की बात करते हैं। क्या आपने भी किसी से इंस्पायरेशनल आपकी शायरी में झलक नज़र आती है किसी की?
बस मैं गालिब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, और उन्हीं के कलाम पढ़ पढ़ के मैंने इस तरफ लिखना शुरू किया, बाकी कोई उस्ताद वगैरह कुछ नहीं।
कुछ मौजूदा शायरी में आप कुछ रुझान देखते हैं कि गालिब इतना बड़ा नाम है कि फराज ने कहा था कि हम तो सिर्फ उठा के चूम के और रख देते हैं, हाथों से उठाया नहीं जाता, इतना भारी भरकम नाम है। तो क्या आजकल के शायरों में भी आप देखते हैं कि कुछ रुझान है गजल की शायरी की तरफ जो मेयारी भी हो?
जी जी गजल के बड़े अच्छे अच्छे शायर जो नए आ रहे हैं आजकल, उनमें हैं काफ़ी इम्कान हैं। वो गज़ल ऐसी चीज़ नहीं है जो मर जाए, गज़ल हमेशा ज़िंदा रहेगी।
लेकिन गज़ल कहना भी इतना आसान काम नहीं, आमतौर पर नज़्म की तरफ रुझान रखने वाले फिर भी बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन आला मेयार की गज़ल कहने वाले कम नज़र आते हैं। तो आपका रुझान क्या नज़्म की तरफ भी है?
मैंने ज़्यादा गज़लें कही हैं, लेकिन कुछ नज़में भी हैं जो मैं उसकी भी आपको एक दो
कुछ अच्छे चलते चलते हमारे सामाईन की नज़र कोई अगर अपना कलाम आप करें तो बड़ी इनायत होगी। इससे पहले कि हम अपने सामाईन से इजाज़त लें।
जी जी एक गज़ल के चंद शेर हैं। वो जो दुनिया में मोहब्बत का भरम है हम हैं, हाँ वही लोग जो इस दौर में कम हैं हम हैं। कौन कहता है ज़माने से वफा ख़त्म हुई, हिजर की शब में जो बादीद नम हैं हम हैं। पाबा जंजीर हमें क्या कोई सयाद करे, जिन असीरों को बहुत जुल्फ के खम हैं हम हैं। और मोतबर आज अगर बुलहवसी ठहरी है, गम न कर जान अभी शहर में हम हैं हम हैं। अच्छा आपको एक नज़्म का मैं सुनाता हूँ, नज़रे इकबाल। ये अल्लामा इकबाल की जो है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, उस पर कुछ मैंने गिरह लगाई हैं उनके अशार पर। करोड़ों यहाँ कहकशां और भी हैं, और ये बज़्म साइंसी अदब एक कराची में होती है, उसमें मैंने पढ़ी थी। करोड़ों यहाँ कहकशां और भी हैं, बुझे सूरजों के निशां और भी हैं, कहीं जिंदगी के गुमां और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तहां और भी हैं। जो खोले वो गेती के गेसुए पुरखम, तो दुनिया बसाए नई इब्ने आदम। रहे चश्म क्यों फिक्र फरदा से पुरनम, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम। मकामात आहो फुगां और भी हैं। वो न्यूटन गैलीलियो वो किपलर वो कूपर, कलंदर का जोरे बयां हाउ हू पर, तजर्बात करता चला जा लहू पर, किनात न कर आलम रंग बू पर, जहां और भी आसमां और भी है। और मैं फिक्र से पुर रहे जाम तेरा, फजाओं में उभरेगा फिर नाम तेरा, सितारों को उलझाएगा दाम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
بہت خوبصورت کلام اور بہت اچھی شاعری، یقیناً اسے پذیرائی بھی ملی ہوگی. چلتے چلتے آپ ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے کہ یہاں آسٹریلیا آپ آئے ہیں، تو پہلی بار آپ کا یہاں آنے کا اتفاق ہوا؟
نہیں، آسٹریلیا میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، پچھلے سال بھی آیا تھا، اور اس سال چونکہ میرا بیٹا یہاں پر کام کرتا ہے تو اس کے پاس میں آتا رہتا ہوں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. ماشاء اللہ بڑی اچھی سوسائٹی ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے.
اور اس وقت پورے آسٹریلیا میں اور بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، کچھ آسٹریلیا والوں سے کچھ آپ نے سنا ہے جو شیئر کرنا چاہیں، یا آسٹریلیا والوں سے کچھ کہنا چاہیں جہاں کمیونٹی تک جہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی؟
آسٹریلیا والوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اس سوسائٹی کو جو انہوں نے ایک ملٹائی کلچرل سوسائٹی بنائی ہے اور سب جو مل جل کر یہاں رہ رہے ہیں، اس کو قائم رکھیں اور بالکل کوئی تفرقے وغیرہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں.
مغرب ممالک سے پاکستان کا دورہ کرنے والے بہت سے شعرا بھی پاکستان آتے ہیں اور بہت سے پاکستانی شعرا بھی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. کیا آپ کو کچھ شاعری کا فرق نظر آیا ہے جو لوگ مغربی ممالک سے آتے ہیں ان کو اگر کبھی آپ نے سننے کا موقع ملا تو؟
جی ہاں، جو ہمارے برے صغیر کی شاعری ہے وہی سب سے بہترین شاعری ہے، اور پاکستانی شعرا کا اپنا ایک مزاج ہے. ہندوستان کے شعرا بھی آتے ہیں لیکن وہ ترنم کی بیس پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے شعرا میں کنٹینٹس ہوتے ہیں ان کے شعروں میں.
تو ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی آسٹریلیا آتے رہیں گے اور ہم اپنے سامعین سے آپ کو ان کو متعارف بھی کرواتے رہیں گے اور سنواتے بھی رہیں گے. آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہمارے سامعین سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ
جی الوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ.
اور سامعین، آپ کے ہمیں میسیجز بھی مل رہے ہیں پروگرام کے بیچ میں. ہم نے شروع میں ایک غزل کی جھلک صرف موسیقی سنوائی تھی، میرے خیال میں تمام ہی لوگوں نے اسے پہچان لیا ہے. جی ہاں، یہ معروف غزل احمد فراز کی ہے اور اسے بہت عرصے پہلے مہدی حسن نے ہی گایا تھا. آپ لوگوں میں سے سب سے پہلے اس آواز کو پہچاننے والی ایک خاتون تھیں، ڈاکٹر زری ملک، کلیٹون وکٹوریا، میلبورن سے. اور آپ سب کی نظر چلتے چلتے مہدی حسن کی گائی ہوئی یہی احمد فراز کی مشہور غزل کر رہا ہوں. اپنے آج کی میزبان ریحان الوی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ، پھر ملیں گے گر خدا لایا. اللہ نے کے بان
اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملیں. اب کہ ہم بچھڑے